कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछय गोसाई करी चरणबंदन जा हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुरन। महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया वरियसी प्रेम भक्ति प्रदेवी राधिकेतां नमाम्यहम्। राधे वृंदावनाधीशी करुणामृतवाहिनी कृपया निज पदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतां। वंदे नंद ब्रजस्त्रीनां पादरणुमभीक्ष्णस जसां हरी कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौरहरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशनकारी नृसिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वभीष्ट व्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जय राधा दामोदर जीव की जय। जय दामोदर व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय उर्जेश्वरी मदेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। समवेत गौरभक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंदे। आज हम लोग वृंदावन धाम में गुरु वैष्णव के आनुगत्य में कोशिश कर रहे हैं या करेंगे कि दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत नियम सेवा सुस्थ रूप से पालन कर सके। जीवन के बहुत समय मूल्यवान है। कुछ समय ऐसे होता है जो हमारे लिए बड़े दुखदायी होता है, किंतु जब हम भगवान से भक्तों से दूर हटते हैं तभी हमारे लिए दुख है। कहते हैं रूप गोस्वामी प्रभु के लिए कि सिरूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजन से मोर व्रत से ही जप से मोर जीवन है जीवन। अभी ये सोचना चाहिए यदि हम लोग रूप रघुनाथ के पास है गुरुवर्ग के पास है तो हमारे जीवन का समय अमूल्यवान समय नष्ट नहीं हुआ। क्या हुआ? हम सब प्रभु के चरणारविंद में सदा सर्वदा विराजमान रहेंगे। आज यदि हमारा व्रत संग नियम सब कुछ और किसी के लिए होता है तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया नष्ट हो गया और उसके लिए कर्मफल हो जाता है, भोगना पड़ेगा। पाप बाप को भी नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक एक मुहूर्त अभी हम संकल्प आज लेते हैं कि हे दामोदर, हे राधारानी, कृपा करो कि कभी भी एक मुहूर्त समय नष्ट न करे, किसी के लिए शेयर न दे, किसी के लिए हम अमूल्य समय को नष्ट करे, कर्मफल न बनाए। कर्मफल के हिस्सा कोई नहीं लेगा, जो कर्म करेंगे उसका फल अपन को ही भोगना होगा। आज यदि कुछ भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, भगवान के सेवा करेंगे, उसका फल लाखों करोड़ों लोग ले सकता है, किंतु कमेगा नहीं, वो नहीं घटता, वो इतना बढ़ता है दिन दोगुना चार चौगुना। और कुकर्म करने से उसका फल कोई नहीं लेगा। नारद ऋषि इसलिए क्या किया, नारद ऋषि कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम लोग किस में पड़े हुए हो, समय नष्ट कर रहे हो, हैं? ये जो कुकर्म कर रहे हो उसका फल कौन भोगेगा। एक समय वो पहुंच गए रत्नाकर दस्यु के पास, बोलते तू जो ये पाप करता है तेरा फल कौन लेगा। कहते मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे माँ, मेरे बच्चे, मेरे ये पत्नी सब लेंगे। बोले ये तो बहकाने की बात है, तू जाके पूछ किया। बोलो तुम चालाक चतुर, मेरे को बहका करके भागा दोगे और अब मैं तुम भाग जाओगे। बोले नहीं, तू जा पूछ किया। जब पूछने गया बोले हम क्यों तुम्हारे फल, पाप का फल का भाग ले, भागो यहाँ से। माँ बाप बोले तेरे को पाला पोसा किस लिए। ठीक ऐसे नारद ऋषि आज कुबेर लोक में पहुँच गए। वो सर्वत्र गमनागमन करते हैं, देखते हैं कौन जीव भगवत विमुख होकर के दुख के दरिया में उछल रहे, कूद रहे और जब जीवन नष्ट करने जा रहा है, चमड़ी और दमड़ी में फंस रहा है, मोह में भोगों में रम रहा है, उसका फल जब भोगेगा तो कितना जातना होगा। क्यों इसको न वापिस लाया जाए। बड़े दयालु, इतने परम दयालु महाबदायन्य कोई नहीं होगा। नारद ऋषि जाकर के कुबेर से पूछा, अरे कुबेर, तुम्हारे पुत्र सुपुत्र कहाँ हैं। बोले महाराज, जन्म देना माता पिता का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, कर्म का फल नहीं दे सकता। ऐसे कुकर्मी मेरा दोनों पुत्र हैं, असुरों से भी गया बीता है, ये लोग भगवत विमुख है और भोगी और इतने अत्याचारी, क्या करूं। मैं सदा सर्वदा भोलेनाथ को स्मरण करता हूँ, शायद भगवान आ शंकरसन राम मेरे गुरु शिव ठाकुर सब प्रसन्न हो गए, आपको भेज दिया, आप ही उद्धार कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं करेगा। ये सुनकर के नारद ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, जीव को सब सामग्री, सुंदर जौवन, सुंदर स्वस्थ शरीर, सब कुछ दे दिया, देने से बात क्या हुआ, ये कुकर्म में, अपकर्म में, भोगों में इसको लिप्त कर दिया। कैसे नारकी जीव है, कैसे दुर्दशा भोगेगा, फल आएगा तो कहाँ जाएगा। ओ नारद ऋषि प्रभु से प्रार्थना करने लगे, ओ प्रभु प्रभु, हे गोकुलपति, हे गोकुल बिहारी, आप सबके कुलों को, खानदानों को उद्धार करने वाले, गोपीकुल, गोपकुल, गाभीकुल, गोकुल, उनके ही नहीं समस्त कुल के खानदान के उद्धारक आप ही है, तो प्रभु मैं इन दुष्टों को मैं आपके चरणारविंद में कैसे न कैसे भेजता हूँ। हैं, ऐसे नहीं जाएगा, घर के अंदर इतना शक्ति है, मोह है, चमड़ी दमड़ी शरीर के अंदर, इसको छोड़ करके कुछ नहीं जानता है, सब कुछ यही मानता है, अभी मैं चलता हूँ। नारद ऋषि जा रहे हैं, देखते हैं वन उपवन, वन देखी भ्रम है ए वृंदावन, हैं, पर्वत देखी भ्रम है ए गोवर्धन, नदी देखी मान है यही तो कालिंदी, हैं। नारद ऋषि जा रहे हैं वन उपवन, देख करके उनको कृष्ण स्मृति आ गया, ब्रज की स्मृति आ गया, गोकुल की स्मृति आ गया, इतना भाव विभोर हो गए, कहाँ हैं श्रीमती राधारानी, कुंज बिहारी कहाँ, कुंज कुटीर है, और ये कहाँ, इतने सुंदर सुंदर वन उपवन, ये कहाँ नरक बना रखा है, ओह कहाँ भगवान की लीला भूमि, कहाँ भगवान के लिए सब कुछ उपहार, और कहाँ ये हैं कीचड़ बना में कीचड़ में उछल कूद कर क्या कर रहा है। नारद जी देख रहे हैं हजारों सरोवर में कमल खिले हैं, इतना सुंदर मलय पवन प्रवाहित हो रहा है, क्या सुंदर दृश्य है। वो कृष्ण स्मरण करके हैं ऐसे नाचने लगे, गाने लग गए, तन्मय हो गए। बोले देखो ये रस को छोड़कर के कहाँ जा रहा है, जड़ रस में कहाँ कौन भाग रहा है। उनको स्मृति आ गई उस वृंदावन की, तो जाके जब पहुँचे तो देखा कमल के वन में सरोवर में हाँ वो दो कुबेर का पुत्र हाँ जम ओ नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों नंगे धड़ंगे युवक है और कितनी अप्सराओं को गंधर्वों को किन्नरों को लेकर के किन्नरियों को हैं भोग कर रहा है। और वो लड़कियाँ अप्सराएँ देख करके नारद ऋषि को वहाँ से उठ करके जल्दी कर कपड़ा वपड़ा पहन करके पेड़ के आड़ में खड़े हुए। ये दोनों बिगड़ गए हैं, तू कहाँ से आ गया बाबा जी हैं, मेरे को मैं यहाँ पर भोग कर रहा हूँ और तू आकर बाधा देने आया हैं, और उल्टा पुल्टा गाली गलौज, नंगे धड़ंगे होश भी नहीं है, और अप्सरा को खींचने लगे, गाली गलौज करने लग गए। और नारद जी को मारेगा क्या, उनके हाथ पैर थोड़ी चलेगा, किंतु जवान तो बंद नहीं करा, बहुत कुछ अपशब्द बोलने लग गया, किंतु नारद जी परवाह नहीं करते किसी की। वो तो हरिस्मरण में मस्त है, उनको क्या लेना देना है, कौन गाली दे रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उनके अंदर में कानों में सुना ही नहीं देता, उनके पास तो पहुंच ही नहीं पाता। कुकर्मी क्या कुकर्म अपने पास ही रहता है, वो नहीं किसी को देने से कोई सबको ले ही नहीं लेता है। जो दुष्ट दानव है वो मानव की भाषा जानता है तो मानवों के साथ रमता है, किंतु वो ऋषि तो परमहंस ऋषि वो कहाँ भगवत स्मरण में मस्त है। उन्होंने हरिस्मरण करने और उनको उपदेश देने लग गया, किंतु वो सुने कहाँ। बोले तू क्या जड़ हो गया, सुनाई भी नहीं देता है, भगवान का नाम कीर्तन भी नहीं कर सकता, चमड़ी और दमड़ी में आसक्त हो गया, नंगा धड़ंगा होश नहीं है, पेड़ की तरह हो गया। तब नारद ऋषि ने सोचा दारिद्रता ही अंजन है, जब तक व्यक्ति दरिद्र नहीं होता है तो उसके आँखों में कुछ दिखाई नहीं देता। धनी मानी पंडित कुलीनेर बड़ अभिमान हैं, इतना अहंकारी अभिमान दाम्भिक हैं, कहाँ नरक यंत्रणा में जाने के लिए तैयार है, किंतु भगवत स्मरण नहीं करता। तो उन्होंने बोला ठीक है तेरे को अब मैं दिखाता हूँ, दारिद्रता ही अंजन, अभी मैं तेरा सब कुछ हर लेता हूँ। बस तुरंत क्या कर दिया, बोले जा गोकुल वृंदावन में जाके महावन में नंद भवन के सामने पेड़ बन करके जन्म ग्रहण कर, कोई भाग भी नहीं सकता, कोई पत्ता काटे डाली काटे कुछ बोल नहीं सकता, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा हैं, सब समय सबकी जो कुछ आएगा उपहार ग्रहण करना पड़ेगा। किंतु किससे वहाँ भेजा, इससे कि नंद बाबा अपना चरण धोते हैं घर के जाने के पहले, तो उनको चरणामृत मिलेगा, बुद्धि तो सुधरेगा, भोजन करेंगे तो वहाँ से अधरामृत भी उनको मिलेगा, और जो भगवान के गुणगान कीर्तन करते हैं सारा गोपियाँ ब्रजवासी आकर के नंद भवन में कानों में सुना ही पड़ेगा, रुचि नहीं है तब भी सुनना पड़ेगा हैं, दरवाजे में आकर के दोनों को जन्म दे दी, ले अब भाग नहीं सकता, पैर के नीचे चक्र है ना, एक जगह टिकता नहीं, भागता है, आया भजन करने को उठन लगे कपास। भगवान ने कितना सुंदर तन मन धन सब कुछ दिया, किंतु कहाँ लग गए, किसमें। इससे नारद जी बोले हाथ में बेड़ी और पैर में बेड़ी देने से भाग जाएगा हैं, भगवान से बोलेगा खोल दो, जैसे देवो की वसुदेव दिन रात कहे थे खोल दो खोल दो खोल दो, जेल से निकाल दो निकाल दो। भगवान बोले अरे और भी इंतजार कर, 10 साल तूने पहले इंतजार कर, 10 साल और इंतजार कर, बाद में खोलूंगा, क्यों खोल ले तो भगोड़े भग जाएगा, फिर मेरे को स्मरण थोड़ी करेगा, हैं? हाथ पैर खुले हैं ना, तो मैदान बन जाएगा, इसे नहीं खोलूंगा, बंद रहे जेल में तो याद मुझे करेगा। तो हमारे लिए ये वरदान है, यदि ऐसे भी यदि जन्म मिल जाए, पेड़ के जन्म भी मिल जाए, हैं, तो हर गोकुल में तो कथा कीर्तन चरणामृत सब कुछ अनायास, और सब दरवाजे में घुसेंगे तो क्या भक्त लोग पकड़ करके आलिंगन करके तभी तो जाएंगे, छुएंगे तो तभी तो कल्याण है। हम तो भक्तों के चरण धूल लेना नहीं चाहते, उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहते, कम से कम तो जाएगा तो छुएगा सब। नारद जी बहुत सोच विचार करके चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भागवत में, कहते हैं देखो ये जो दारिद्रता है कोई साधारण चीज नहीं है, भगवान किसी को दरिद्र बनाते हैं बड़े भाग्य की बात है, नम्रता विनयता बने रहते हैं, हाथ जोड़ कर चलता है, दो गाली देने से सुन लेता है, दो थप्पड़ मारने से भी जवाब नहीं देता है, हैं? और भगवान से रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोना आता है। अहंकारी व्यक्ति कोर्ट कचहरी कर लेगा, गुंडा बदमाश पीछे लगा देगा, किंतु दरिद्र क्या करेगा, उसको तो कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं नारद जी कितने कृपालु, भगवान ने कहा है हरिष्य तद्धनम सनई, जिसको जैसे हम अनुग्रहणामी जिसको मैं कृपा करता हूँ उसका सारे कुछ मैं हरण कर लेता हूँ, तभी निष्किंचन अकिंचन होकर के मेरे को पुकारेगा, मेरे को छोड़कर दुनिया में भागेगा नहीं, और नहीं तो कुछ रहेगा तो उसके हिस्सेदार नास्तेदार रिश्तेदार कितने सारे हो जाएंगे। नारद जी कृपा करके भेजा। अभी हम लोग आते हैं लौट करके कहाँ, अब दामोदर मास दामोदर व्रत नियम सेवा, क्यों ये जो दामोदर व्रत राधा दामोदर व्रत, आज के दिन में शरद पूर्णिमा कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं ब्रज में तो आया किंतु पशु पक्षी कीट पतंग जितने ब्रज में है सबको भगवत प्रेम से सराबोर करना है, फिर ये लोग कभी भी मेरे को छोड़ करके दूर नहीं जाएगा, नहीं तो किसी को यदि भगवत प्रेम नहीं मिला तो प्रेम के भूखे जीव है, जहाँ प्रेम मिलता है ना वहीं भागता है, उसको कोई नहीं बांध सकता, कोई रोक नहीं सकता, हैं? वो कहते हैं जिस यदि ये अपराकृत ब्रज प्रेम यदि इसको नहीं दूँ तो ये लोग कभी मेरे पास नहीं आएगा। साधन तो बहुत किया, साधन सिद्ध हो गए किंतु फिर भी मुझसे कुछ लेके दूरी भागेगा, रहेगा नहीं, और फिर जातना भोगेगा, कब तक तो ऐसे कष्ट पाएगा। इससे भगवान ने इच्छा किया आज मैं सबको ये प्रेम संपत्ति का दान करूँगा, भगवान ने सोचा, उसी के द्वारा ही मैं अजीत होने पर भी मुझे जीत लेगा, मैं किसके बंधन में आने वाला नहीं हूँ किंतु मुझे बांध लेगा, उन्हीं के प्रेम से उन्हीं को बांध सकते हैं, नहीं तो जल प्रेम से उनको नहीं बांध सकते, जल प्रेम से जल व्यक्ति ही मिलेगा किंतु भगवान नहीं मिलेंगे। इससे उन्होंने क्या किया, भगवान ने स्वयं सोचा, इतने में भगवान की शक्ति श्रीमती राधारानी क्या किया, लाखों करोड़ों अरब खरबों अपने प्रकाश हैं उसमें आविर्भूत कर ली, एक दो नहीं कितने असंख्य, किसने किया, राधारानी ने देखा मैं अकेली भगवान के मनोविष्ट को कैसे पूरा करूंगी, कैसे सब जीवों को यह प्रेम संपत्ति का परिवेशन करूंगी, इसलिए भगवान की इच्छा को पूर्ण करना है, दामोदर दामोदर को दाम के द्वारा उनको बंधन करना है, ये प्रेम रूपी रस्सी से बांध सकते हैं, ये रस्सी से बांधने कर बांध कर कब तक हम उनको रख सकते हैं, कभी संभव नहीं। बोली महाराज जी ने वर मांगा मेरे दरवाजा में रह जाना, मैं 50 दरवाजा में से निकलूं तो सब जगह मैं आपको बैठ देखता रहूं, आते समय भी जाते समय भगवान बंद गए वहाँ, किंतु वहाँ यह प्रेम नहीं है, वहाँ से लक्ष्मी जाकर मांग के ले आई, एक स्वरूप में वहाँ बैठे हैं मूर्ति के साथ, किंतु वहाँ कोई प्रेम सेवा नहीं है। इससे भगवान स्वयं चाहते हैं ऐसे प्रेमी हैं को प्रेम संपत्ति मिले और उसके द्वारा ही मेरे को सेवा करे, तो मेरे को हृदय में सदा के लिए बांध लेगा। नहीं तो ये जड़ प्रेम के द्वारा जड़ व्यक्ति को बांध करके लाता है और ला करके न जाने क्या दुर्दशा, कल किसी को बांध करके ले आया, आज किसी को ले आया, अभी ले आया, फिर आपस में ठूसम ठूस लड़ाई, ना जाने कितने दंगा फसाद, कितने कोर्ट कचहरी की क्या क्या करता है, और दो दिन बाद बस तलाकशुदा कर देता है। तो ये कोई प्रेम थोड़ी ना है। इसलिए भगवान कहते हैं नहीं, मैं जब भगवान ने सोचा श्रीमती राधा रानी आज शरद पूर्णिमा के दिन में रात में उन्होंने असंख्य अपने स्वरूप को प्रकाश किया, प्रकाश करके साधन सिद्धों को नित्य सिद्ध अपने सान्निध्य के द्वारा सेवा परिपाटी सिखाने लग गए। भगवत सेवा कैसे होता है, भगवत प्रेम का मूल्य क्या है, हैं दामोदर को हम कैसे बांधेंगे चिरकाल के लिए, हृदय में उनको स्थान बनाएंगे। हमारे हृदय में तो कितने लोगों ने आकर के स्थान बना लिया, कितने भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस हैं, कितने कितने कोई अता पता नहीं है, किंतु भगवान के लिए स्थान कैसे बने। ऐसे श्रीमती धरणी ने ये ऊर्जेश्वरी उनका नाम है, ये ऊर्जा व्रत है, आज से एक महीना तक राधारानी स्वयं अपने शक्तियों को परिवेशन करना शुरू कर दी। शक्ति के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना शक्ति नहीं, भजन में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, और शक्ति के बिना भक्ति नहीं कर सकता। जिसके अंदर अप्राकृतिक शक्ति नहीं है वो भजन नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। हैं नायमात्मा बलहीन न लभ्य, यो आत्मा बिना अप्राकृत बल के चित बल के कभी भी जान नहीं सकते आप। जड़ बल के द्वारा आप खुदकुशी कर सकते हैं किंतु भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, इसके द्वारा भजन नहीं हो सकता। ताकतवर व्यक्ति भजन कर लेगा ऐसा नहीं होता। इससे श्रीमती राधारानी एक महीना टाइम दिया ये दामोदर को बांधने के लिए। 15 दिन में जशोदा माता ने बांधा और एक महीना में मंजरियों ने सखियों ने राधा रानी के अंचलों से कृष्ण को बांध दिया। बोले कभी नहीं जाओगे ना छोड़ के, कैसे आज आज क्या किया, शरद पूर्णिमा की रात को शारदीय रास शुरू हुआ, तो रास का मतलब यह नहीं समझना कि लैला मजनू की है ये प्रेम, ऐसा नहीं। रसिक शिखर कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, वो अप्राकृत कीर्तन के द्वारा, अप्राकृत नित्य के द्वारा और सबको स्पर्श के द्वारा सबके हृदय में अप्राकृत रसों का संचार कर दिया। यह रस कोई बाजार में मोल तोल नहीं ले सकता कोई, यह रस कोई है किसी स्वर्गलोक में भ्रुभुवश महाजन तपस्वितलोक में नहीं मिल सकता, वैकुंठ में है। जो अप्राकृत रस शब्द ब्रह्म हैं भगवान स्वयं आज शाम को उच्चारण किया, बीज मंत्र क्लिंग उच्चारण कर दिया, फिर बाद में बंसी के द्वारा सबको मंत्र के द्वारा दीक्षित किया और सबको आकर्षण किया। आकर्षण करके पूरा तारात्रि, तारात्रि माने ब्रह्मरात्रि, ये नहीं कि 12 घंटा का रात यही नहीं, ब्रह्मरात्रि, ब्रह्मरात्रि मतलब 71 चतुर्युगी, एक दिन 71 चतुर्युगी एक रात। इतना दिन तक भगवान ने इतना रात्रि रात्रि भर भगवान ने हैं अपने पूर्ण चंद्र का प्रकाश करके और सबको आलोकित करके सबको शीतलता प्राप्त करा करके सबको ये रस का संचार किया हैं। ये ऐसे नहीं मिलता साधन के द्वारा, न सिद्धि प्राप्त करने से मिलता। भगवान के साथ यदि साधन करेंगे भगवान क्या देंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अधिक से अधिक वैकुंठ दे देंगे, किंतु यह ब्रज प्राप्ति नहीं होगा, कभी संभव नहीं है। तो नारद ऋषि कितने कृपालु हैं, हमारे गुरुवर्ग कितने कृपालु हैं, हम जानते नहीं, सुनते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं, कुछ भी पता नहीं, तभी गुरुदेव बुला करके ले आए। जैसे नादान बच्चे जन्म लिया, उसको रोटी और कपड़ा की मतलब नहीं, ओके माँ का स्तन का दूध ही उनको जरूरत है, हाँ उसी से बच्चा पालता है, बड़ा होता है, हैं ऐसे ही अप्राकृत रस वैश्य कृष्ण रस जेबद्याम लब्धानंदी भवती, ये अप्राकृत रस संचार करने के लिए भगवान स्वयं हैं आज ये आविर्भूत हुए, और आज भगवान स्वयं ये दामोदर व्रत दामोदर क्या दामोदर व्रत क्या हम कौन से नियम पालन करें कि दामोदर प्रसन्न हो जाए हैं। तो ये दामोदर व्रत केवल यदि हम ब्रजदेवियों के साथ ब्रजेश्वरी मदेश्वरी प्राणेश्वरी हैं मखेश्वरी क्रियेश्वरी सदेश्वरी हैं त्रिवेदी भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी जो ईश्वरियों के ईश्वरी हैं उमा रमा सत्यसची चंद्रा रुक्मिनी राधा अवतार सभे आमने अमानी राधारानी के चरण कमलों के हैं जो किंकरियों के दासन दास यदि कोई है उन लोग के अनुगत्य में यदि हम रहे और उनके आश्रय ले तो वो सिखाएंगे तभी हाँ हो सकता है कि दामोदर प्रसन्न हो जाए क्योंकि दामोदर के निकटस्थ जनों के द्वारा ही दामोदर प्रसन्न है तो उनके अनुगत्य करना आश्रय लेना और उनके पास सीखना और एक महीना टाइम दे दिया ये तुम्हें कुछ नहीं चाहिए साधन भजन कुछ नहीं चाहिए दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए तप और जप और कुछ नहीं तुम केवल हैं ईश्वरियों के अनुगत्य में किंकरियों के अनुगत्य में मंदिरों के अनुगत्य में रह करके उन जैसे वो लोग कहे ऐसे पालन करो हैं प्रार्थना करो पड़े रहो हैं वो लोग सिखाएंगे शक्ति संचार करेंगे रस संचार करेंगे प्रेम संपत्ति देंगे देकर भगवत हैं सेवा के लिए उपयुक्त बना देंगे ये जो कार्तिक व्रत दामोदर व्रत नियम सेवा ये अन्य कहीं नहीं संभव है अन्यत्र और न कोई दे सकता है जिसके अंदर दे मंजरी भाव है गोपी भाव है ब्रजदेवी का अनुगत्य है वही ये दे सकता है सिखा सकता है आगे बढ़ा सकता है नहीं तो बस उदम करना है उछलना कूदना या उपवास करना निर्जला रह जाना इससे कुछ मिलना नहीं है कुछ नहीं होगा। हमारे महाराज जी कृपापूर्वक कहते थे देख ये कार्तिक व्रत ब्रजेश्वरी का इस महीना में राधा रानी के लिए सुंदर से सुंदर श्रृंगार सुंदर सुंदर भोगराग सुंदर सुंदर उपहार सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाओ कृष्ण कीर्तन का आनंद नर्तन पर सुंदर रसों का उनका प्रभाव होना चाहिए जिससे कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। राधा रानी के गुणगान राधिका कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र संक्षेपे कहीनु कथा घुचाओ मनर व्यथा दुखमय अन्य कथा द्वंद्व राधा रानी का नाम कीर्तन करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और कृष्ण नाम करेंगे तो राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे हैं और सब कुछ दुखमय है द्वंद्व है द्वंद्व है दुखमय है नहीं होगा भक्ति इसलिए ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊँ ये सब छोड़ तो पर न हराऊँ इसलिए ब्रजधाम में ऐसे रसिक वैष्णव के अनुगत्य में और यदि रहेंगे सुनेंगे कीर्तन करेंगे और उनका उच्छिष्ट पूजी दासानुदास बनेंगे तो जरूर भगवत कृपा हैं वो प्रेम संपत्ति हम प्राप्त कर सकेंगे। तो हम अब टाइम नहीं लेते क्योंकि हमें सुबह आधा घंटा टाइम फिक्स्ड है तो शाम को हम लोग करेंगे कथा किंतु कीर्तन भी होगा और शाम को क्या करूं विदेशी का अन्न खाता हूं गुण गाना पड़ेगा उनकी उनके पास नौकरी करता हूं तो उनके पाद तरणबाही दास हूं तो उनके चरण धूलि लेकर के अपने को अभिषिक्त करना ही पड़ेगा क्यों महाराज जी बोले ये तुम विदेश में जाना है विदेशी बनना है तो विदेशी है सब वृंदावन विदेशियों का है क्यों स्वदेश तो अपना अपना घर बाहर है किंतु विदेश है वृंदावन ये गोलोक वृंदावन है तो इससे ये विदेश है तो विदेशी वृंदावनवासी है तो हमें उनका अनुगत्य करना ही पड़ेगा क्योंकि गुरुदेव ने उनको मंजरी भाव उपासना की पद्धति सिखाई और हमने सुना नहीं किसी को। एक दिन मैं किसी एक छोटे से भक्त को पूछा तुमने दीक्षा लिया है तो तुम किसके भजन करते हो तो बोले मैं गोपियों का अनुगत्य में और कृष्ण का भजन करता हूँ। मैं तुमको किसने सिखाया ये? बोले हमारे गुरु महाराज जी ने ये सिखाया। तो मैंने बोला धन्य है भाई, हमारा हम लोगों ने तो कभी सुना भी नहीं बात। तो बोले मैं तो राधा रानी के किंकर ही बनना चाहती हूँ और कुछ चाहिए नहीं। तो जिनके बीज में ही वो पौधा है जैसे, वो ऐसे ही उगेगा। तो इसलिए गुरुदेव कृपा करके बुला बुला करके लाया और सबको ये रसमय भक्ति के लिए उनको अधिकार दिया। वो लोग बड़े सुस्त रूप से गुरु की सेवा कर रहे हैं और करेंगे। मैं भी यदि इन लोग के अनुगत्य करूँगा तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे। बस उनके प्रसन्नता के लिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी प्रसन्न हो इसलिए मैं उच्छिष्टपति दास हूँ, मैं सेवा करता हूँ। किंतु वैष्णव ने आदेश दिया कि नहीं, सुबह हमारा हिंदी कथा होना चाहिए। तो अब उसमें हम चेष्टा करेंगे जितना हो सके हम सुबह का कथा करेंगे। किंतु यदि भक्त लोग प्रतिदिन परिक्रमा जाएंगे तो हमारे पास अधिक टाइम है, आधा घंटा बहुत है, क्योंकि फिर इसके बाद और भी सेवा है। आज विशेष करके परिक्रमा के बाद संकल्प लेके यमुना जी में आ करके हवन में बैठना है, क्योंकि यदि आहुति नहीं देते हैं, गोस्वामी वर्ग को बुलाते नहीं हैं, तो हमारे लिए चितबल नहीं मिलना है। इसके बाद हमारे ठाकुर जी का महाप्रभु काल आए हैं तो उनका अभिषेक होगा, या राधा कृष्ण ये मंदिर में शरद पूर्णिमा के दिन स्वयं आके आविर्भूत हुए, क्यों राधा रानी की इच्छा थी। कृष्ण का इच्छा था मैं अकेले नहीं, मैं बहुत बनूंगा। राधा रानी की इच्छा थी मैं सबको प्रकाश करके कृष्ण सेवा सिखाऊंगी और कृष्ण सेवा करूंगी। इसलिए श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा को लेकर के यहाँ पर आए। और क्या हुआ, मेरे को कितना सुनना पड़ा। बोले महाप्रभु को छोड़ दिया, राधा कृष्ण के पास में ललिता विशाखा लाया, परंपरा को छोड़ दिया, ओ प्रभुपाद के धारा से अलग हो गया। कितना सुनना पड़ा। किंतु कुछ दिन बाद देखा महाप्रभु स्वयं आ गए। मैंने नहीं बुलाया, वो अपने आप चल चल करके आ गए। बोले तुमको गाली नहीं सुनना पड़ेगा, मैं यहीं रहूँगा और देखता हूँ कौन गाली देता है और कौन क्या बोलता है। हैं, स्वयं आकर के बैठ गए। तो मैं तो धन्य मानता हूँ, कृतार्थ मानता हूँ। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना लेना देना, क्योंकि मैं सेवा नहीं करता, नहीं मेरे बस की नहीं है। करते हैं खुद और कराते हैं खुद, जो कुछ व्यवस्था उन्हीं की है। गुरु महाराज बैठे हैं, गुरु महाराज पहले आए, कोई नहीं था यहाँ, गुरु महाराज आकर के बैठ गए, सबको बुला लिया। इससे ये हरिदास जहाँ पर प्रभावित होगा तो वहाँ सब कुछ विराजमान रहेगा। तो हम लोग चेष्टा करेंगे ये कार्तिक व्रत आज गुरु महाराज के चरण में प्रार्थना करते हैं, कि हम लोग को ये वृंदावन में बुला तो ले आए, वो स्वयं ही इस कथाओं का संचार करे, कीर्तन करे और सबको सिखाए, परिवेशन करे और सबको अपने गोदी में लेकर के पालन पोषण करे। तो आज हमारे परम गुरु जी का भी तिरुभाव तिथि है और हम शाम को सुनेंगे। अभी तो टाइम बहुत हो गया, 6:30 बजे भी निकले तो भी बहुत है। अभी जा करके नगर संकीर्तन में निकलेंगे, यमुना जी संकल्प करके उनके पूजा करेंगे। ऐसा नहीं उछल कूद नहीं करने का, प्रार्थना करना सीखो, नम्रता विनयता सीखना है, धैर्य रखना है, तब कोई भक्ति में प्रवेश हो सकता है। इससे सद्गुण तो भगवान देंगे, किंतु चेष्टा तो हमें करना पड़ेगा। इससे यमुना जी के पास प्रार्थना करना है, हे विशाखा देवी, हे यमुना देवी, आपके अंदर भगवान के चरण रज, गोपियों के चरण रज और सब ब्रज में ब्रज के सब कुछ आपके पास धरोहर संपत्ति है। आप कृपा करो, हमें अधिकार दो, हम भी ब्रज रज में अपने को अभिषिक्त कर सके। प्रार्थना करके आने से तो यमुना देवी स्वयं नस नस में प्रभावित है और प्रभावित करने वाला भक्ति रस को संचार करने वाली। कहते भ्रातुरंत कश्यपत्य नवीपत्ति हारिणी प्रेक्षयति पेपी पापी नवी पाप सिंधु तारिणी नीरमाधुरी भी रप शेष चित्त बंदिनी मांग पुना तु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। क्योंकि वो सूर्यपुत्री है यमुना अजम महाराज धर्मराज, तो वो अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी सुबह आप आते हो शाम को जाते हो, कौन पाप पुण्य करता है सब आप देखते हो, किंतु भक्तों को जो मेरे पास आने वाला है उनको पाप पुण्य के अधिकारी मत करना, उनको आप भक्ति के अधिकार देना। और जम महाराज को कह दिया यमुना जी ने, मेरे पास कोई आ गया ना तुम उसको छूना नहीं, कुछ बोलना नहीं, हैं, देखो ये मेरे पास आया है। इससे गुरुजी क्या करते थे, हर साल सबको लेके मथुरा में जाके संकल्प लेते थे, क्योंकि मथुरा जमुना देवी की सखी हैं और प्रिय सखी, वहाँ संकल्प करके परम गुरु जी का विरह तिथि मनाते, फिर 84 कोस की यात्रा उठाते, मधुबन तालबन करके कुमुदबन बहुलामन ये सब करके फिर धीरे धीरे करके 84 कोस यात्रा करते हैं। तो ये सब कथा काल सुनेंगे, आज बहुत टाइम हो गया क्योंकि आगे का बहुत सेवा है और परिक्रमा है, बहुत कुछ है। काल हम धीरे धीरे कर परम गुरु जी की महिमा और साथ साथ में दामोदर व्रत क्या है और कैसे सुष्ठु रूप से पालन कर सके, एक जीवन में कुछ तो करें हैं, जीवन नष्ट नहीं करना है, बड़े अनमोल हैं। नारद जी समझते थे, इसे नारद जी ने केवल नलकुबरे जगर मणिग्रीव को नहीं हमारे से पशुओं को भी बांध करके लाए और पड़क दिया, जा पड़े रहे गुरु के चरण में वैष्णव के चरण में, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें कुछ आता नहीं और जानते नहीं, किंतु एक ही चीज़ जानते हैं, गुरुवर्ग परम कृपालु दयालु है, वो लोग जो कुछ देंगे हम वही परिवेशन करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो फक्कड़ है, पाप है, ताप है, अपराध है। इसे जमुना जी क्या करेंगे, प्रेक्षयति पापिनो भी पाप सिंधु तारिणी, हैं समस्त पाप रोग शोक मोह दुख अनर्थ कहाँ उड़ जाता है, रूई में आग लग जाता है तो कितना देर लगता है, बस उनके चरण में जाने की देर है, शरणागत होने की देर है, प्रार्थना करने की देर है, नहीं तो वो स्वतंत्र किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करती है। जब हम जाएंगे प्रार्थना करेंगे तब बोलेंगे अच्छा तुम चाहते हो ठीक है, देर नहीं कष्ट देर नहीं अंधेर नहीं है, अब भी तुरंत अभी कर देती हूँ, सारे व्यवस्था करेंगी। जैसे कि हाँ गोप कुमारियाँ गई, रो रही है दल के दर, तो कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे मन की दुख को, और तुम मेरे पास आया हैं जल में प्रवेश करके शरीर छोड़ दोगे, नहीं 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 अभी मैं व्यवस्था करती हूँ। गुरु को बुला लिया, वृंदा देवी को बुला लिया, आ जाओ वृंदा देवी इन लोगों को दीक्षा दो मंत्र दो, इनको उद्धार करो, बस आ गए वृंदा देवी और दीक्षा मंत्र दे दी, बोले दाओ तुम लोग 1 महीना जप करो तुम्हारा नित्य सिद्धि दे देंगे हैं। तो इसलिए जमुना देवी कितना कृपालु हैं हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं। काल से हम लोग और सुनेंगे, आज बहुत टाइम हो गया। गौर प्रेमानंदे, बोलो गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, राधा दामोदर जीव की जय, दामोदर व्रत की जय, दय दामोदर व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे।